ओम शांति। आज के इस राजयोग के सत्र में हम राजयोग के तीसरा लेसन देखेंगे। राजयोग करने की विधि बहुत सुंदर और बहुत सहज है, जिसके तीन कदम हैं, तीन स्टेप्स है। सबसे पहला स्टेप पहले दिन में आपको समझाया गया था कि स्वयं का यथार्थ परिचय, स्वयं को जानना, स्वयं को पहचानना, ये है पहला कदम। दूसरा कदम परमात्मा का यथार्थ परिचय। इतने सारे मत मतांतरों के बीच में एक भगवान का यथार्थ परिचय क्या है, उसके बारे में समझा हम सब ने कल। तो आज हम देखेंगे तीसरा स्टेप, वो है आत्मा का परमात्मा के साथ संबंध, कनेक्शन कैसे जोड़ा जाए। बचपन से ही ये सिखाया जाता है भगवान को याद करने की। अलग अलग तरीके से हम परमात्मा को पूजते, पुकारते, याद करते आए हैं, लेकिन जो निजी कनेक्शन है या फिर बहुत सहज जो है कनेक्शन राज्यों के द्वारा, हम कम मेहनत में ज्यादा हम प्राप्तियां अनुभव कर सकते हैं। अगर देखा जाए राज्यों का यथार्थ अर्थ क्या है, अब तक तो सबको ये मालूम पड़ गया होगा कि योग शब्द का अर्थ है जोड़, कनेक्शन, मिलन, यूनियन, संबंध कह सकते हैं। वियोग का अर्थ है अलग हो जाना, बिछड़ जाना, वियोग का अर्थ है। तो योग यहां किसका किसके साथ, क्योंकि बचपन से ही हम व्यक्ति के साथ, वस्तुओं के साथ कनेक्शन जोड़ते आए हैं। तीन प्रकार के योग, तीन लेवल का योग हम कह सकते हैं। सबसे पहला है फिजिकल लेवल, जो स्थूल स्तर के बारे में, ये है योग, जिसमें अगर दूध में शुगर डाल देते हैं, शक्कर डाल देते हैं, वो शक्कर मिल जाता है दूध में, उसको फिर अलग करना मुश्किल होगा। तो दूध में शक्कर उसका योग उसका कनेक्शन जुड़ गया उसके मिल गया दोनों मिल गए और रेडियो को जब हम कोई फ्रीक्वेंसी में ट्यून करते हैं वो भी एक प्रकार का फिजिकल योग हो गया और जब दो वायर्स को जो इलेक्ट्रिक वायर को हम जॉइन करते हैं इंसुलेशन निकाल करके कॉपर वायर को हम जॉइन करते हैं जोड़ते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है उसमें वो भी कनेक्शन जुड़ गया। ये है फिजिकल लेवल के जो भी चीजों का के बीच का योग है। और मेंटल योग क्या है? मानसिक स्तर का जो योग है वो है इंसान का दूसरे इंसान के साथ कनेक्शन। हम अगर किसी को भी याद करते हैं तो उनके साथ हमारे वाइब्रेशंस हमारी एनर्जी जुड़ जाता है। किसको भी याद किया तो अचानक उनका फोन आया तो कहते हैं ना योग था तो इसीलिए मिले, उसके लिए योग भी कहते हैं। जब इंसान का इंसान के साथ कनेक्शन है वो है मानसिक स्तर का योग। और तीसरा और बहुत श्रेष्ठ योग है वो है आत्मा का परमात्मा के साथ योग। कोई भी वस्तु के साथ योग लगाने से किसी वस्तु को मैंने याद किया वहां आत्मा पावन नहीं बनती, उल्टा आत्मा की ही एनर्जी उस वस्तु में जाती है। इंसान का जब इंसान के साथ योग होगा तो वहां भी आत्मा पावन नहीं बन सकती, आत्मा श्रेष्ठ नहीं बन सकती, क्योंकि एक ही लेवल में कई बार आत्माएं एक ही लेवल में होते हैं या फिर ऊपर नीचे होने के कारण से एनर्जी लेवल ऊपर नीचे होने के कारण से वो एनर्जी फिर उतना श्रेष्ठ लेवल तक एनर्जी को हम ले नहीं जा सकते। तो यहाँ राजयोग माना आत्मा का परमात्मा के साथ कनेक्शन। परमात्मा को याद करने की क्यों जरूरत है? अभी कोई तो समझते हैं ना कर्म ही पूजा है, कर्म ही ईश्वर है, श्रेष्ठ कर्म कर्म करते चलो तो उसका रिजल्ट मिलता जाएगा। तो परमात्मा को याद करने की क्यों जरूरत है? परमात्मा के बिना काम नहीं चल सकता, क्या समझते हैं? परमात्मा के बिना काम चल सकता है? परमात्मा को याद करने की क्यों जरूरत है? क्योंकि परमात्मा हम सभी आत्माओं का पिता है। कितना भी बोले कि मुझे पिता नहीं है या फिर ग्रैंड पेरेंट्स नहीं है या फिर कोई परिवार नहीं है, ना मानने से ये सिद्ध नहीं होता, है ही नहीं। परमात्मा तो है ही है, उनकी उपस्थिति तो है ही है, उनका अस्तित्व तो है ही है। अगर मैं ना मानूं इसका मतलब नहीं है कि उनका अस्तित्व नहीं है, और ये भी ये नहीं है कि मेरा कनेक्शन उस परमात्मा के साथ नहीं है। मैं मानूं या ना मानूं वो अलग बात है, लेकिन हर आत्मा का कनेक्शन उस परमात्मा के साथ अटूट और गहरा है ही है, क्योंकि हम सभी आत्माएं उस परमात्मा के संतान हैं। और दूसरी बात, उस परमात्मा को उस पिता को याद करने की क्यों जरूरत? मान लिया वो हमारे पिता है, लेकिन दूसरी बात उनको याद करने की क्यों जरूरत है? जब भी हमें प्रॉब्लम आता है समस्याएं आती है तो हम किसको याद करते हैं? निकट संबंधियों को याद करते हैं, फ्रेंड्स को याद करते हैं, ज्यादा से ज्यादा हम याद करते हैं हमारे माता पिता को। कोई भी कुछ चोट लग जाता है तो आवाज क्या निकलता है? माँ। माँ को सबसे पहले याद करते हैं, फिर पिता को जरूर याद करेंगे कोई भी ऐसे उलझन होगा जिंदगी में, क्योंकि हमें पता है कुछ भी हो जाए लेकिन माता पिता हमको छोड़ेंगे नहीं, हमारे साथ नहीं छोड़ेंगे, है ना। ऐसे ही आत्मा के माता पिता कौन है? परमात्मा है। तो कुछ भी उलझन हो, कुछ भी समस्याएं हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो जिंदगी में, वो मदद करने के लिए है ही है, और निस्वार्थ रूप से वो मदद करने के लिए तैयार है, क्योंकि परमात्मा को हमसे कुछ जरूरत नहीं है, कुछ अपेक्षाएं नहीं है कि मुझे कुछ मिल जाए। वो तो दाता है, देने वाला है, तो इसीलिए कोई भी ऐसे एक्सपेक्टेशंस अपने से उनको नहीं है। निस्वार्थ रूप से वो हमारी मदद करने के लिए तैयार है। एक होता है खुद मेहनत करके आगे बढ़ जाना, दूसरी बात होती है खुद मेहनत करने के साथ साथ माता पिता के आशीर्वाद से बहुत जल्दी आगे बढ़ जाना। इसमें अंतर होता है। तो इसीलिए जरूरत है परमात्मा को याद करने की। और परमात्मा को याद करने से होगा क्या? कई बार हम छोटी मोटी चीजों के लिए हम याद करते, हे भगवान मुझे गाड़ी दिला दो, मुझे नौकरी दिला दो, मुझे बच्चा दिला दो, मुझे ये दे दो वो दे दो। स्थूल चीजों के लिए हम भगवान के पास जाकर के उनकी प्रार्थना करते हैं, ये दे दो, है ना। लेकिन भगवान है कौन और उनसे क्या मांग रहे हैं, इसके लिए इसको भी हमें सोचना होगा। वो तो पतित पावन है, ज्ञान का सागर है, सर्वशक्तिमान है, और छोटी छोटी चीजों को अगर मानते तो वो भी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। लेकिन इससे बढ़कर बहुत कुछ मिल सकता है, उसको छोड़ करके हम छोटी छोटी चीजों को न मांगे। क्योंकि अगर कोई मेरे पिता अगर करोड़पति है, मल्टी बिलियनर है मेरे पिता, और ये उनके पास जाकर के मैं पूछूं पापा मुझे 10 रुपया दे दीजिए, मुझे 100 रुपया दे दीजिए, वो तो मिल जाएगा, 100 रुपया या फिर 1000 रुपया मिल जाएगा। लेकिन मैं किसके लिए लायक हूँ, मेरा पिता कौन है, मैं कौन हूँ, जब ये समझ में आता है तो बहुत कुछ हम अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। और इसीलिए इस राजयोग का लक्ष्य है राजयोग, माना अपने ही कर्मेंद्रियों पर राज्य करना। क्योंकि दूसरों को एडवाइस देना, दूसरों को सजेशन देना कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये बहुत सहज है, क्योंकि ज्ञान तो सबके अंदर है ही है, सही क्या है गलत क्या है उसकी समझ तो हम सबको है ही है। लेकिन खुद की बारी आती है ना करने की, फिर कुछ ना कुछ हम बहाना बना देते हैं, उसने झूठ बोला ना तो इसलिए मुझे क्रोध आया, वैसे तो मुझे गुस्सा नहीं आता है, लेकिन उसको उसने झूठ क्यों बोला, मान लिया उसने गलत की। लेकिन गलत को ठीक करने के लिए, गलत से वो ठीक नहीं होता, आग से आग नहीं बुझती, आग से आग को बुझाने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। तो इसलिए जब हम अपने कर्मेंद्रियों को पूर्ण तरह नियंत्रण कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, अपने ही कर्मेंद्रियों पर राज्य कर सकते हैं, हम स्वराज्य अधिकारी बन जाएंगे। और वो जो संस्कार है, पॉजिटिव और पावरफुल संस्कार हमारा जब नेचुरल हो जाए, शांति के संस्कार, प्रेम के संस्कार, आनंद के संस्कार, शक्ति के संस्कार, ये सब हम नेचुरल हो जाए। ऐसा नहीं कि कुछ परिस्थितियों में मैं बहुत अच्छी तरह बात करूं, कुछ लोगों के साथ अच्छी तरह बात करूं, कुछ लोगों के साथ मेरा ईर्ष्या द्वेष घृणा है, वो भी फिर ठीक नहीं है, है ना। तो पूर्णतः जब मैं आत्मा के जो सातों ही गुणों को 100% अनुभव करते हुए अपने कर्मों में उसको एग्जिबिट करना शुरू करूं, फिर उनको कहा जाएगा स्वराज्य अधिकारी। जो स्वराज्य अधिकारी बन जाएंगे, विश्व राज्य अधिकारी वो बने जाएंगे। हमें स्थूल रूप से किसी के ऊपर राज्य करने की जरूरत नहीं है, उस पोस्ट और पोजीशन की जरूरत नहीं है, लेकिन दिलों पर राज्य करना शुरू कर देते हैं। स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी। मैं अपने अंदर वो परिवर्तन कर लूं कि क्या मैं, मेरे आंखें जो मैं जो देखना चाहूं वही देख रही हूं, क्या मैं सुनना चाहूं वही सुन रही हूं, क्या मैं बोलना चाहूं वही बोल रही हूं। ऐसा तो नहीं है कि मैं कर्म कर लेने के बाद मैं पछता रही हूं, ऐसे तो नहीं होना चाहिए ना। उनको स्वराज्य अधिकारी नहीं कह सकते हैं। तो ये है लक्ष्य राज्यों का। हाँ, राज्यों के अभ्यास के द्वारा हम अगर आधा घंटा भी मेडिटेशन में बैठते हैं तो शांति की अनुभूति तो हम कर ही लेते हैं, लेकिन वो शांति केवल आधे घंटे के लिए न रह करके पूरे दिन के लिए क्या आत्मा के अंदर वो चार्ज हो गया? कर्म करते समय भी क्या मेरे अंदर वो शांति बनी रही, या कोई विपरीत परिस्थितियों में भी मेरी क्या वो शांति बनी रही? वो है हमारे सिद्धि। विधि से सिद्धि है, यहाँ रिद्धि सिद्धि की बात नहीं है। रिद्धि सिद्धि वाले क्या करते हैं, छू मंत्र कर लिया, विभूति लेके आ गए, कुछ चीजें लेके आ गए, वो अल्पकाल की प्राप्तियां। लेकिन यहाँ जीवन के लिए प्राप्तियां हैं, वो है विधि से सिद्धि। ये है कॉलेज, ये है यूनिवर्सिटी। जितना हम अच्छी रीति पढ़ेंगे, समझेंगे चीजों को और उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू करते हैं, उतना अपने अंदर परिवर्तन होता जाएगा और घर घर स्वर्ग बनता जाएगा। या ब्रह्म कुमारिया लोगों को अलग नहीं करती, ब्रह्म कुमारिया घर घर को स्वर्ग बनाती है। क्यों? क्यों घर घर स्वर्ग बन जाएगा? जब मैं मेरा कनेक्शन, मेरा अपने साथ जो कनेक्शन यथार्थ हो जाएगा, तो फिर मेरा कनेक्शन दूसरे लोगों के साथ भी यथार्थ हो जाने के कारण से एक दूसरे को समझना सहज हो जाएगा। तो इसलिए जब एक दूसरे को समझना शुरू करते हैं, तो फिर एक दूसरे के केयर और उनके सम्मान करना भी हम सीख जाते हैं। तो ये इन बातों को जब हम समझेंगे, तो फिर घर घर स्वर्ग ऑटोमेटिकली बन जाएगा। तो उसके लिए बहुत जरूरी है हमारा कनेक्शन, आत्मा का कनेक्शन परमात्मा के साथ यथार्थ हो। कई बार ये कंप्लेन बना रहता है कि मैं मेडिटेशन में बैठता हूं तो याद, मतलब वो कनेक्शन जुड़ता नहीं है, भगवान को याद नहीं कर सकते, नींद आ जाता है। क्यों आदा जाता है या फिर मेडिटेशन क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि उनके साथ मेरा कनेक्शन ही नहीं है, उनके उसके बारे में समझ नहीं है। तो अभी हम समझने की कोशिश करेंगे कि राजयोग करने का या परमात्मा के साथ कनेक्शन जोड़ने के आधार क्या है। अगर हम देखें प्रैक्टिकली अपने जीवन में, देखेंगे कि किनको हम याद करते हैं, किन लोगों को हम याद करते हैं। क्योंकि योग का सहज शब्द है याद। योग बहुत बड़ा शब्द है, लेकिन सहज रीति से अगर हम कहें, वो है याद। परमात्मा को याद करना, ये है राजयोग या मेडिटेशन। तो अभी प्रैक्टिकल जीवन में अगर देखें, हम किन लोगों को याद करते हैं, जिनका परिचय है उनको याद करते हैं, जिनका परिचय नहीं है उनको याद नहीं कर सकते, क्योंकि ये परिचय ही नहीं है। तो सबसे पहला आधार है परिचय प्राप्त करना। तो परमात्मा का परिचय तो हम सबको कल मिल गया। परमात्मा का परिचय क्या है? परमात्मा का परिचय क्या है? क्या समझा हम कल के सेशन से? परमात्मा निराकार है, ज्योति बिंदु स्वरूप है। जैसे आत्मा अति सूक्ष्म ज्योति है, ऐसे परमात्मा भी अति सूक्ष्म ज्योति है। लेकिन अंतर क्या है? वो सागर है, बेहद है, सर्वशक्तिमान है, और उनका नाम शिव है। भले अलग अलग नाम से, अलग अलग धर्म के लोग अलग अलग नाम से पुकारते हैं, लेकिन है ज्योति। चाहे अल्लाह नूर है कहे या फिर गॉड इज लाइट कहे, एक ओंकार निराकार कहे या फिर शिव कहे, सभी एक ज्योति के तरफ इशारा कर रहे हैं। तो ये है, ये हुआ परिचय। और दूसरा है, दूसरे लोग को, किन लोगों को हम याद करते हैं अपने जीवन में? जिनके साथ हमारा संबंध है उनको हम याद करते हैं। और परमात्मा के साथ हमारा संबंध क्या है? और संबंध जोड़ना क्यों जरूरी है? जब तक संबंध नहीं जोड़ेंगे तब तक वहां हम अपनी भावनाओं को नहीं जोड़ सकते। अगर मान लीजिए आप रोड पर कहीं जा रहे हैं, चल के जा रहे हैं, तो दो बाइक्स के एक्सीडेंट हो जाते हैं। वहां कोई स्ट्रेंजर है, अजनबी लोग हैं, आप नहीं जानते हैं उन दोनों को, लेकिन आप क्या करेंगे? थोड़ा बहुत आप मानवीयता के आधार से कुछ ना कुछ आप मदद करेंगे, उठाएंगे उसको, हॉस्पिटल ले जाना जरूरी समझा तो फिर वहां ले जाएंगे, तो वो थोड़ा बहुत मदद करेंगे। लेकिन एक दो दिन के बाद भूल भी जाएंगे, क्योंकि हमें पता नहीं है वो कौन थे, वो स्ट्रेंजर्स थे हमारे लिए। लेकिन वही दो लोग आपके निकट फ्रेंड्स हैं या संबंधी हैं, तो क्या करेंगे? उनके बारे में ज्यादा ख्याल रखेंगे, और एक हफ्ता थोड़ा उनका फोन करके फिर ख्याल पूछते रहेंगे, ठीक हुए कि नहीं हुए, और कुछ चाहिए नहीं चाहिए। तो वो अंतर क्यों है? क्योंकि सेकंड केस में वहां संबंध जुड़ने के कारण से भावनाएं जुड़ी हुई होती हैं, इसीलिए इतना कंसर्न, इतना केयर, इतने उनके बारे में थोड़ा बहुत उनके बारे में पूछना शुरू करते हैं। ऐसे ही जब तक परमात्मा के साथ संबंध नहीं है तब तक भावनाएं नहीं जुड़ेगी। जब तक भावनाएं नहीं जुड़ेगी वहां याद करना मुश्किल लगेगा। केवल हम भगवान को भगवान और भगत के रूप में याद करते हैं, उतना भावनाएं जुड़ी हुई नहीं होने के कारण से फिर निरंतर याद या लंबे काल का याद नहीं हो सकता है। तो इसीलिए भावनाएं जोड़ना बहुत जरूरी है। वैसे तो हम जोड़ते आए हैं, जब कीर्तन करते हैं, मंदिर में जाकर के गायन करते हैं, तो क्या गाते थे? मात पिता बंधु सखा सब कुछ आप वो, ये कीर्तन गाते थे ना। लेकिन केवल वो जो कीर्तन है केवल मंदिर तक सीमित रह जाता है, लेकिन जैसे ही घर में आए सब कुछ भूल गए, ये मेरे पति है, ये मेरे पिता है, ये मेरे माँ है। तो लोगों के साथ संबंध जोड़ना शुरू कर लिया, परमात्मा को जो हमने कहा आप मात पिता बंधु सखा सब आप हो, वो हम भूल जाते हैं। हाँ, ये जो स्थूल संबंध है वो तो है ही है, उसको हमें तोड़ना नहीं है, क्योंकि शारीरिक नाते से वो मेरे मात पिता है, शरीर को जन्म देने वाले मात पिता है। लेकिन परमात्मा कौन है? परमात्मा आत्मा के मात पिता है। भले पति पत्नी दोनों वो आरती कर रहे हैं, दोनों गा रहे हैं, आप मात पिता बंधु सखा सब आप हो, आपस में तो पति पत्नी है, पति अगर ये गा रहे हैं आप मात पिता बंधु सखा, लेकिन पत्नी ये तो नहीं गा रहे हैं आप सास ससुर हो मेरे, ये तो नहीं गा रहे, पत्नी भी यही गा रही है कि आप मात पिता बंधु सखा है। तो किस नाते से वो मात पिता है? वो आत्मा के नाते से मात पिता है, है ना? इस बात को जब हम समझेंगे उस रीति से परमात्मा को हम याद कर सकते हैं। और मुख्यतः यहाँ बताया जाता है सात संबंधों के को हम जोड़ सकते हैं परमात्मा के साथ। वैसे सर्व संबंध कहते हैं, सर्व संबंधों में मुख्यतः सात संबंध आते हैं। सबसे पहला संबंध है पिता का संबंध। पिता से क्या मिलता है? पिता से क्या मिलता है? प्रॉपर्टी मिलता है। पिता के पास जो भी प्रॉपर्टी है वो सब कुछ बच्चे का, बच्चों का हो जाता है। और फिर एक रिकग्निशन मिलता है समाज में, किसका बच्चा है, ये फलाने व्यक्ति का बच्चा है, रिकग्निशन मिलता है, एक प्रकार से शक्ति मिलती है पिता के साथ संबंध जोड़ने से। ऐसे ही परमात्मा को जब हम पिता मानते हैं तो उस परमात्मा से प्रॉपर्टी क्या मिलता है? प्रॉपर्टी क्या है परमात्मा के पास? कोई करोड़ों अरबों रुपया तो नहीं है, लेकिन उससे भी बढ़कर है परमात्मा के पास सर्व खजाना, सर्व गुण, शक्तियां और ज्ञान है, है ना? तो इसीलिए परमात्मा को जब हम याद करते हैं उनके पास जो भी खजाना है वो ऑटोमेटिकली हम अधिकारी बन जाते हैं, क्योंकि मैं आत्मा उस परमात्मा के संतान हूँ। जब संतान हूँ तो मुझे मांगने की जरूरत नहीं होगा, हे भगवान मुझे ये दे दो वो दे दो, नहीं। केवल स्मृति रहे कि मैं आत्मा उस सर्वशक्तिमान परमात्मा के संतान हूँ, तो फिर मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, हो गई। इस केवल एक स्मृति से उस शक्ति की अनुभूति हो जाता है, केवल अवेयरनेस, केवल स्मृति से वो अनुभव होना शुरू होगा। ये कहते हैं ना कि तुमको पता नहीं मैं मेरा बाप कौन है, अगर कोई मिनिस्टर का बच्चा है या करोड़ अरबपति का बच्चा है तो कहे उसमें उसके अंदर वो रोब होगा, उसके अंदर वो ठाट होगा कि तुमको पता नहीं कि मेरा बाप कौन है। और आपका बाप कौन है? अभी आपके बाप कौन है? आपके पिता कौन है? उस सारे मिनिस्टरों का मिनिस्टर, करो अरबपतियों का भी अरबपति है, वो है हमारे परम पिता, उस भगवान, इस सृष्टि का रचयिता, सर्वशक्तिमान हमारे पिता है। जब ये स्मृति है इसको एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। जब हम एक्सेप्ट करना शुरू करते हैं वो शक्ति का अनुभव करना ऑटोमेटिकली शुरू हो जाएगा। और दूसरा संबंध माँ का संबंध। माँ से क्या मिलता है? निस्वार्थ स्नेह। कैसा भी बिगड़ा हुआ बच्चा क्यों ना हो, लेकिन माँ कभी भी बच्चे को टुकराएगी नहीं, उसको लेकर के और ही उसको शिक्षाएं देगी, उसको साफ करेगी, उसको प्यार करेगी, लाड करेगी, निस्वार्थ स्नेह। और बच्चा जब माँ के गोद में जाता है वो निश्चिंत होकर के सोता है, क्योंकि पता है मेरी माँ मेरे साथ है, मेरी रक्षा वो करेगी। ऐसे ही परमात्मा को परमात्मा के साथ माँ का संबंध जब हम जोड़ते हैं, निस्वार्थ प्रेम करने वाला एक परमात्मा है बस। कितना भी हम पाप करें, कितना भी गलत कर्म करें, लेकिन बाद में परमात्मा के पास जाकर के क्षमा मांगे, वो क्षमा का सागर है, फिर से वो अपनाएंगे जरूर, वो कभी भी टुकराएंगे नहीं। वो प्रेम का सागर है, करुणा का सागर है। तो माँ का संबंध जोड़ करके देखे परमात्मा के साथ, कितना प्यार का अनुभव आप अपने जीवन में देखेंगे और अपने जीवन में बहुत जल्दी परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। एक प्रकार से निश्चिंतता आएगी जीवन में कि हाँ, मुझे मेरे देखभाल करने के लिए है मेरी परम माँ, वो माँ मेरे साथ है। और तीसरा संबंध है टीचर का संबंध। आप सभी टीचर्स और प्रोफेसर्स यहाँ बैठे हुए हैं, आपसे बच्चों को क्या प्राप्त होता है? ज्ञान प्राप्त होता है, जो भी सब्जेक्ट का ज्ञान है वो प्राप्त होता है आपके द्वारा बच्चों को। परमात्मा हमारा परम टीचर है, उस टीचर से हमें क्या प्राप्त होता है? ज्ञान प्राप्त होता है, क्योंकि वो ज्ञान का सागर है, जानी जाननहार है। कौन सा ज्ञान प्राप्त होता है? मेरा यथार्थ परिचय, मेरा अपना ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, कर्म का ज्ञान, काल चक्र का ज्ञान, जीवन का ज्ञान, जो यूनिवर्सिटीज और स्कूल्स में नहीं पढ़ाया जाता है, ऐसा ज्ञान परमात्मा से प्राप्त होता है। तो टीचर का संबंध जोड़ते हुए, स्टूडेंट, टीचर और स्टूडेंट का संबंध जोड़ते हुए, जब मैं स्टूडेंट लाइफ बिताती हूँ, सीखना अंत तक मैं सीख सकती हूँ, नहीं तो फिर एक अंत तक के बाद फिर हम दरवाजा बंद कर लेते हैं, हाँ बहुत कुछ सीख लिया। नहीं, यहाँ सिखाया जाता है अंत समय तक हमें सीखना है, और स्टूडेंट लाइफ हर रोज है हमारा, इसलिए हमारी पढ़ाई हर रोज होता है। मुरली हम हर रोज सुनते हैं, ज्ञान हम हर रोज सुनते हैं। तो टीचर का संबंध, और चौथा संबंध है गुरु, सद्गुरु। सभी गुरुओं का भी गुरु है सद्गुरु, परमपिता परमात्मा। और उस सद्गुरु से क्या प्राप्त होता है? मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता, गति सदगति का रास्ता। परमात्मा है ही दुख हरता सुख करता, वो दुख नहीं देता कभी भी, दुखों से हरता है और सुख प्रदान करता है। तो दुख हरता सुख करता है होने के नाते हम सभी आत्माओं को दुख से मुक्ति देने वाला, जीवन मुक्ति प्रदान करने वाला परमात्मा है। जीवन मुक्ति माना जीवन में रहते हुए सब दुख दर्द परेशानियों से मुक्त रहना कैसे है, वो सिखाते हैं सद्गुरु। और दूसरी बात है सद्गुरु का आशीर्वाद। आशीर्वाद पाने से, वरदान पाने से जीवन बहुत सहज हो जाता है ना। तो परमपिता परमात्मा हमारा सद्गुरु भी है, हर रोज हमें वरदान देते हैं, वरदानों से हमारी झोली भरते हैं, जिसके आधार से हम उसको हम फॉलो करना शुरू करते हैं, तो फिर अपनी जिंदगी बहुत सहज, दुख और परेशानियों से मुक्त हम रह सकते हैं। और नेक्स्ट संबंध है सखा का संबंध, फ्रेंड का संबंध। अभी जो चार संबंध थे, जो उस चार संबंधों में केवल हम लेते रहे, लेकिन सखा का संबंध, फ्रेंड का संबंध, समानता का संबंध है। वहां लेना और देना होता है, खुदा को दोस्त बना के देखे, आपके दिल का हाल जो भी चीज है आप ओपनली परमात्मा के साथ जब हम शेयर करते हैं, आपका जो दिल है वो क्लीन होता जाएगा, साफ होता जाएगा। तो इसीलिए परमात्मा को कहते हैं वो दिलाराम है, दिल को आराम देने वाला परमात्मा है क्योंकि दिल को समझने वाला कोई इंसान नहीं है, परमात्मा ही हमें जो हूँ जैसी हूँ उसको यथार्थ रीति वो समझ सकते हैं। कई बार हम सोचते ना हम परेशान हैं, प्रॉब्लम में हैं, तो एक फ्रेंड के पास जाकर के हम शेयर कर रहे हैं, मुझे ऐसा हुआ, वे हुआ, वो हुआ, सब शेयर कर रहे हैं ताकि वो समझे। लेकिन वो व्यक्ति अगर मेरे मेंटल लेवल में नहीं है, वो मुझे नहीं समझ सकता, तो फिर क्या कहे, इतनी छोटी सी बात इतना बतंगड़ क्यों बना रहे हो? वो क्योंकि समझ नहीं रहे। मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात है लेकिन उसके लिए वो बहुत बड़ी बात नहीं नजर आ रहा है क्योंकि मुझे वो समझ नहीं रहा है वो व्यक्ति। लेकिन परमात्मा ऐसे व्यक्ति है, मैं जो हूँ जैसे हूँ, मैं जो फील कर रही हूँ उसको वैसे ही समझेंगे और मुझे मदद जरूर करेंगे। तो इसलिए उस रीति से परमात्मा के साथ संबंध जोड़ने की जरूरत है और उनके साथ छोटी छोटी चीजें भी आप शेयर कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि बड़ी बड़ी बातें, केवल मेडिटेशन करते समय ही परमात्मा को याद करना है, नहीं, खुदा को दोस्त बना करके देखिए। और हमारी ये आदत यहाँ सिखाया जाता है ब्रह्म कुमारीज में, कोई भी जाना है कुछ भी करना है उनको बोल करके करो, उनको साथ लेकर के चलो। कहीं भी जा रहे होते हैं दो मिनट परमात्मा की याद में बैठते हैं और हम कहते हैं कि बाबा चलो मेरे साथ, ये कार्य करने के, ये कार्य करने के लिए जा रहे हैं आप चलो। तो ऐसा एक इंटीमेट रिलेशनशिप परमात्मा के साथ, ऐसा डीप संबंध जब होगा, कदम कदम पर परमात्मा की मदद आपको आप देख सकेंगे अपने जीवन में। और नेक्स्ट संबंध है, छठा संबंध है परमात्मा के साथ, स्वामी का संबंध, प्रियतम का संबंध, जो गिरिधर गोपाल के साथ मीरा ने जोड़ा था। जब मीरा ने ऐसा संबंध जोड़ा था श्री कृष्ण के साथ, हर जगह हर समय श्री कृष्ण नजर आते थे। और ये जो विष का प्याला भी अमृत बन गया था, ये जो शैया है, कांटों का शैया भी वो फूलों का शैया बन गया था। तो ऐसा गहरा संबंध उनके साथ था। ऐसे परमात्मा के साथ स्वामी का संबंध आप जोड़ करके देखे, बहुत प्यार का अनुभव आप अनुभव कर सकते हैं। और लास्ट संबंध है बच्चे का संबंध, परमात्मा को बच्चे बच्चा बना करके देखे। सती अनसुईया ने ब्रह्मा विष्णु महेश को अपना बच्चा बनाया, तो वो अनुभव उन्होंने अपने जीवन में किया, तो प्रैक्टिकली उनको वो सुख अनुभव उन्होंने किया। तो ऐसे केवल ऑफिशियल संबंध नहीं परमात्मा के साथ, अनऑफिशियल भावनात्मक संबंध हर संबंध के साथ, हर ये सातों ही संबंध को जोड़ते हुए भावनात्मक कनेक्शन परमात्मा के साथ जब होगा तो वो गहरा होता जाएगा। संपूर्ण संपूर्णता का अनुभव हम अपने जीवन में कर सकते हैं। और तीसरे प्रकार के जो लोग हैं जो उसको हम याद करते हैं, वो बहुत सारे संबंधी होंगे लेकिन उनमें से कुछ खास संबंधी, बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे लेकिन एक या दो लोग ऐसे होंगे तो बहुत गहरे दोस्त होंगे, प्यार ज्यादा होगा, स्नेह की गहराई ज्यादा होगी उन लोगों के साथ। क्यों क्यों उनके साथ ज्यादा है, इतने सारे फ्रेंड्स हैं लेकिन एक दो खास क्यों है? क्योंकि प्रेम ज्यादा है। प्रेम क्यों ज्यादा है उन लोगों के साथ? वेवलेंथ मिलता है उन लोगों का, सोच विचार एक जैसे हम सोचते हैं या फिर एक दूसरे को अच्छी रीति समझ पाते हैं, इसीलिए वो दोस्ती गहरा होता जाएगा। ऐसे ही संबंध, भले सब संबंध जोड़े लेकिन सब संबंधों की गहराई कब अनुभव कर सकते हैं परमात्मा के साथ? जब प्रेम बढ़ता जाएगा, क्योंकि परमात्मा प्रेम का सागर है। जब प्रेम का सागर है उस प्रेम में बहुत अति शक्ति है, अद्भुत शक्ति है, जो आत्मा को ना केवल इस जन्म के दुख दर्दों से हीलिंग मिलता है, लेकिन पिछले जन्मों का भी, जो भी दुख दर्द हम उठाते आए हैं, लेकर आए हैं, इस संस्कार में सब कुछ हील होता जाएगा। तब एकाग्रता आएगी, जीवन स्थिरता आएगी। जैसे एक कन्या है, शादी होने से पहले मन भटकता रहेगा, किसको अपना पति बनाना, पति बनाना इसको उसको उसको, मन भटकता रहेगा। लेकिन एक बार शादी हो गई या फिर एंगेजमेंट हो गया, वो फिक्स्ड हो गया, ये मेरा पति बनने वाले हैं, तो फिर स्थिरता आएगी जीवन में, स्टेबिलिटी आएगी। ऐसे परमात्मा के साथ जब संबंध जोड़ने से, वो प्यार गहरा होने से जीवन में स्थिरता आना शुरू हो जाएगा। और फिर लास्ट संबंध, लास्ट कनेक्शन है, जिन लोगों के से हमें प्राप्तियां हैं, उन लोगों को हम याद करते हैं। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति के साथ मुझे बिजनेस करना है, तो उस व्यक्ति के साथ मेरा योग लगता है या फिर उसको हम याद करते हैं। तो जहां प्राप्ति है, वहां हमारी याद, हमारा मन उन व्यक्तियों को याद करता है। ऐसे परमात्मा से हमें प्राप्ति क्या है, प्राप्तियां क्या है, अथा प्राप्तियां हैं ज्ञान, गुण, शक्तियां, बहुत जीवन को भरपूर करने वाली ऐसी खजाने हैं जो हम अनुभूति करते हैं, प्राप्तियां करते हैं परमात्मा से। तो ये चार आधार है याद के। सबसे पहला है परिचय, दूसरा है संबंध, तीसरा है स्नेह और चौथा है प्राप्तियां, अटेनमेंट। इन चार आधार के आधार, इन आधार से हम परमात्मा को याद कर सकते हैं। और परमात्मा को याद करने से क्या होता है, कई बार हम डर से, कहीं परमात्मा श्राप ना दे दे, तो इसलिए याद करते हैं। अगर कई सालों से आप कुछ पूजा करते आए हैं, पूजा छोड़े नहीं, क्योंकि फिर लगता है कि भगवान श्राप ना दे दे, इसलिए पूजा करना नहीं छोड़ना चाहिए। आप एक मिनट सोचिए, क्या परमात्मा श्राप दे सकते हैं, श्राप दे सकते हैं? परमात्मा तो प्यार का सागर है। माता पिता अपने बच्चों की, जो इंसान के माता पिता, इंसान जो माता पिता अपने बच्चों को ही श्राप नहीं दे सकते, कहते भले कोई बात नहीं, मेरी बात नहीं मानता कोई बात नहीं, मेरे अलग हो जाएगा कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी श्राप नहीं देंगे माता पिता अपने बच्चों को। जब इंसान अपने बच्चों को श्राप नहीं दे सकते, क्या परमात्मा प्रेम का सागर, करुणा का सागर श्राप दे सकते हैं? नहीं। आप उनको याद करें या ना करें, वो नाराज नहीं होंगे। तो इसीलिए जब भी आप परमात्मा को याद करेंगे, डर के आधार से कभी भी परमात्मा को याद ना करें। उसका आधार डर नहीं होना चाहिए, आधार होना चाहिए प्यार। मुझे प्यार है इसलिए मुझे याद करना है, डर के कारण से नहीं। इसीलिए जब हमारा प्यार गहरा होता जाएगा, हम परमात्मा के साथ बात करना शुरू करते हैं। इसलिए कहते हैं प्रार्थना जो है, प्रेयर जो है, वो वन वे कम्युनिकेशन है, और मेडिटेशन जो है वो टू वे कम्युनिकेशन है। जब आप मंदिर में जाते हैं, घंटों घंटों लाइन में लगे रहेंगे, क्यू में लगे रहेंगे, एक मिनट के दर्शन के लिए, एक सेकंड के दर्शन के लिए आप घंटों घंटों खड़े हैं। जैसे ही आपकी बारी आई कि परमात्मा दर्शन लेना है, तो उस समय क्या करेंगे, हाथ जोड़ेंगे और आंख बंद कर लेते हैं। और दर्शन अभी किसको कौन दे रहा है, मैं दर्शन भगवान को दे रही हूँ या दर्शन भगवान का दर्शन मैं ले रही हूँ, क्योंकि एक मिनट जो मिला वो आंख बंद कर लिया और मैं अपना ही बोलती रही, मुझे भय भगवान मुझे ये चाहिए वो चाहिए, ये चाहिए ये दे दो वो दे दो, ये परेशानी है ये प्रॉब्लम है ये समस्या है, वो मैं अपना ही गीत गा रही हूँ। लेकिन क्या मैं एक मिनट शांत होकर के परमात्मा क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं वो सुनने की मैं कोशिश कर रही हूँ? मेडिटेशन में हम दोनों कम्युनिकेशन करें, हम जो विचार करेंगे वो तो करेंगे ही, लेकिन मन को एकदम शांत जब करते हैं तो हम ये सुन सकते हैं, समझ सकते हैं परमात्मा हमें क्या कहना चाह रहे हैं। ये है टू वे कम्युनिकेशन, है ना? तो इसलिए कन्वर्सेशन होगा, ये वन वे कम्युनिकेशन नहीं होगा। और तीसरी बात है विश्वास। विश्वास के आधार, ये जब हम संबंध जोड़ना शुरू करते, कनेक्शन जोड़ना शुरू करते, विश्वास बढ़ता जाएगा। विश्वास बढ़ने के कारण से मैं अपना सब कुछ सीक्रेट्स परमात्मा को बोल सकती हूँ, सब कुछ बोल सकती हूँ, क्योंकि वो कभी मुझे जज नहीं करेंगे, ऐसा क्यों किया, नहीं करना चाहिए, नहीं। हर घड़ी हर कदम मेरे मदद के लिए तैयार है। और चौथी बात है सुरक्षा। मैं उनके सानिध्य में हर घड़ी सुरक्षित हूँ, कभी भी परमात्मा मुझे एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे, कभी भी अपने स्वार्थ के लिए मुझे यूज नहीं करेंगे, है ना? सुरक्षित हम महसूस कर सकते हैं और परमात्मा के साथ संबंध जोड़ने से हम आत्माएं सशक्त हो जाएंगी, शक्तिशाली अनुभव कर सकते हैं। तो इसीलिए आधार हमने देखा, आधार क्या से फिर विधि, मेडिटेशन करने की विधि क्या है, हम लास्ट इसमें अभी आते हैं। विधि क्या है मेडिटेशन करने की? सबसे पहले आपको बताया गया था कि भले आप आधा घंटा 20 मिनट अब अलग समय लेकर के परमात्मा की याद में बैठते हैं, लेकिन सारा दिन भी हम कर्म योगी बन सकते हैं, कर्म करते समय भी हम परमात्मा को याद कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए अभ्यास चाहिए हर रोज, ना केवल एक दो दिन, लेकिन हर रोज एटलीस्ट 20 मिनट क्या हम परमात्मा की याद में बिता सकते हैं? 24 घंटों में से 20 मिनट या आधा घंटा दे सकते हैं? दे सकते हैं? दे सकते हैं? हाँ जी। क्यों देना चाहिए? सुबह सुबह उठ करके जब परमात्मा को याद करने से क्या होगा? एक है, जैसे शरीर को तीन चीजें जरूरत है ना, एक है न्यूट्रिशियस भोजन, दूसरा है एक्सरसाइज और तीसरी बात है नींद। तीनों में से कुछ भी गड़बड़ होता है स्वास्थ्य पर उसका असर पड़ता है। ऐसे ही ये जो न्यूट्रिशियस भोजन है, पौष्टिक भोजन जो है आत्मा के लिए क्या है, पॉजिटिव थिंकिंग, जो हर रोज ज्ञान सुनते, कुछ ना कुछ अच्छी बातें हम मन को फीड करें, वो हमारा न्यूट्रिशियस भोजन हो गया। और दूसरी बात है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज क्या है? परमात्मा की याद। जब मन और बुद्धि से एक्सरसाइज परमात्मा को याद किया तो आत्मा के अंदर वो बल, वो शक्ति मिलना शुरू हो जाएगा। और तीसरी बात है गहरी नींद। उस मेडिटेशन में हम गहराई का अनुभव करते हैं, स्थिरता का अनुभव करते हैं, तो वो है गहरी नींद। ये तीनों बहुत जरूरी है। तो इसलिए सुबह सुबह उठ करके 20 मिनट या आधा घंटा भी आप मेडिटेशन में बैठते हैं तो सारे दिन के लिए आत्मा रिचार्ज हो जाएगी और देखेंगे आपके जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। और करने की विधि क्या है? एक शांति, शांत वातावरण में एक ऐसे जगह आप ढूंढ सकते हैं अपने घर में और वहां आप शांति से बैठेंगे और जब आप बैठेंगे तो फिजिकल पोजीशन क्या होना चाहिए? स्ट्रेट बैकबोन. अगर स्ट्रेट होता है वो अलर्टनेस आएगा. और दूसरी बात है, यहां कहते हैं ओपन आई मेडिटेशन है, आंखों को खोल करके आप मेडिटेशन करें, ताकि फिर कर्म करते समय भी मेडिटेशन करना आपके लिए इजी हो जाएगा. अगर आप आदत बना देंगे कि आंख बंद करके ही मैं मेडिटेशन कर सकती हूं, तो फिर कर्म करते समय आप मेडिटेशन करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा. तो और दूसरी बात है, आंख खोल करके क्यों मेडिटेशन करना है? क्योंकि आंखों से देखते हुए भी मैं फोकस अंदर के तरफ मुझे लेना है. जब भी आप योगियों का चित्र देखते हैं, गुरु नानक जी का चित्र आप देखते हैं, आंख आधा खुला हुआ है. महात्मा बुद्ध के का चेहरा देखते हैं, उनके भी आंख आधा खुला हुआ है ना. तो जो भी योगियों के चित्र आप देखें, अगर जब विवेकानंद जी जब योग में बैठे हुए होंगे, तो भी आप देखेंगे उनका आंख जो है आधा खुला हुआ है. इसका मतलब है, मेडिटेशन में भले हम देख रहे हैं, देखते हुए भी मेरा ध्यान पूरा अंदर के तरफ है. तो इसीलिए मेडिटेशन करते समय आप आंखों को आधा खुला रखें तो बहुत ही अच्छा रहेगा. ये है फिजिकल पोजीशनिंग. और मेंटल पोजीशनिंग क्या है? क्या सोचना है मेडिटेशन करते समय? मेडिटेशन करते समय मन को एकदम ब्लैंक करे ये नहीं हो सकता, मन को एकदम शून्य करे ये नहीं हो सकता. मन का कर्म ही है सोचना. तो इसलिए क्या सोचना है? सबसे पहला, पहली बात है, सबसे पहला स्टेप है कॉन्टेम्पलेशन या फिर मनन चिंतन. जब आप बैठते हैं, सबसे पहला कदम है सोचना शुरू करें, स्व चिंतन. मैं आत्मा हूं, ज्योति बिंदु स्वरूप हूं, भ्रुकुटी के बीच में विराजमान हूं. आत्मा के बारे में सोचना, इसको कहते हैं मनन चिंतन. मैं कौन हूं, क्या हूं, मेरे गुण क्या है, मेरे कर्तव्य क्या है. आत्म चिंतन करना पहला कदम है. और नेक्स्ट कदम है संबंध या कनेक्शन जोड़ना परमात्मा के साथ. इसीलिए कहते हैं मन मना भव, मन और बुद्धि के द्वारा मुझे याद करो. तो मन को फोकस करना है परमात्मा में, कनेक्शन जोड़ना है. कनेक्शन जोड़ने के लिए तो परिचय तो मिल गया, फिर उनके बारे में सोचना शुरू करना है कनेक्शन जोड़ने के लिए, कि परमात्मा कौन है, कहाँ है, उनके रूप क्या है, गुण क्या है, कर्तव्य क्या है, और मेरा संबंध उस परमात्मा के साथ क्या है. और तीसरी बात है, वो कनेक्शन जोड़ते जोड़ते एकाग्रता. एकाग्रता आना बहुत जरूरी है, क्योंकि भले आप सोच रहे हैं, याद कर रहे हैं, जब तक उसमें शक्ति नहीं है, एकाग्रता नहीं है, आपके पाप भस्म नहीं हो सकते. जैसे पेपर को आप सूरज के नीचे हजारों सालों तक भी रखेंगे, वो पेपर जलेगा नहीं. लेकिन अगर कॉन्वेक्स लेंस रख लेंगे ऊपर और फोकल पॉइंट पर उस पेपर को रखेंगे, तो वो जो फोकल पॉइंट पर जब पूरा सूरज के जो किरणें फोकस हो जाएंगे, वहां फिर जलना शुरू हो जाएगा. एकाग्रता. तो यहां एकाग्रता कहां से आएगा? एकाग्रता आएगी प्यार से. जैसे अगर आप किसको बहुत प्यार कर रहे हैं, उनके प्यार में आप मग्न हैं, उनके ही बारे में आप याद कर रहे हैं, सोच रहे हैं, कोई आया गया पता ही नहीं चला आपको, वो आए गए आप इन आंखों से देख भी रहे हैं, लेकिन बुद्धि रजिस्टर नहीं किया. क्यों रजिस्टर नहीं किया? आंखों से भले देख रहे हैं, लेकिन सोच कुछ और रहे हैं और उस सोच में डूबे हुए हैं, इतने एकाग्रता से उसमें डूबे हुए हैं, बाहर क्या चल रहा है पता ही नहीं, आंखें खुले हैं लेकिन देखा नहीं। यह है एकाग्रता। जब प्यार में डूब जाएंगे तब एकाग्रता आएगी, उस परमात्मा के प्रति प्यार। और चौथा स्टेप है रियलाइजेशन। जब प्यार में हो जाएंगे, एकाग्रता का अनुभव करते हैं, तो फिर रियलाइजेशन, अनुभूति होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए एकाग्रता के लिए क्या करना है, अब बहुत जल्दी विचारों को चेंज नहीं करना है। आप मान लीजिए कि 5 मिनट के लिए मैं सोचूं मुझे शांति का अनुभव करना है, तो वो वही उसी संकल्प में, उसी विचार में अपने मन को स्थिर रखे कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, परमात्मा शांति का सागर है, शांति की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही है, मैं शांति को ग्रहण कर रही हूँ। तो इन्हीं विचारों में जब आप मग्न होंगे तो फिर शांति की शक्ति आत्मा अब्सॉर्ब करेगी। लेकिन अगर मैं सोचूं एक मिनट, एक घड़ी में ये सोचूं कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, परमात्मा शांति का सागर है, नेक्स्ट घड़ी में ये सोचूं परमात्मा प्रेम का सागर है कि मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, जल्दी जल्दी बदलेंगे तो फिर वो अब्सॉर्ब नहीं होगा। एक विचार में, एक शक्ति में, एक गुण में या एक संबंध को लेकर के कुछ मिनटों तक हम उसमें स्थिर रहेंगे तो फिर आत्मा उस शक्ति को अब्सॉर्ब करेगी। ठीक है, तो रियलाइजेशन होना शुरू होगा, अनुभूति होना शुरू होगा, फिर कहेंगे कि हाँ मजा आ गया मेडिटेशन करके। नहीं तो फिर बार बार विचार को चेंज करेंगे, मजा नहीं आएगा, उसका आनंद आप नहीं ले उठा सकेंगे। तो इसीलिए उसके लिए ये सब बात। ठीक है, चलिए अभी हम थोड़े समय के लिए वो मेडिटेशन करेंगे। मैं आशा करती हूँ सबको समझ में आया होगा मेडिटेशन कैसे करना है, लेकिन अभी मैं जैसे बोलती जाऊंगी वैसे आप मन में सोचते जाएंगे। जैसे बताया गया था 3 बातें, पॉजिटिव थिंकिंग, सोचना, मनन चिंतन करना पहला कदम है। मनन चिंतन करने के साथ साथ विजुलाइज करना, बुद्धि रूपी आंख से उसको देखना, और तीसरी बात है फील करना, महसूस करना। ये तीनों साथ साथ हम इस मेडिटेशन में यूज करेंगे। और 4 जो स्टेप्स है मेडिटेशन करने के, पहले मनन चिंतन, स्व चिंतन, आत्मा कौन है क्या है, आत्मा अनुभूति। दूसरा कदम परमात्मा कौन है, परमात्मा के साथ कनेक्शन। और तीसरी बात है एकाग्रता, परमात्मा के प्यार में या परमात्मा के कोई भी एक गुण में मग्न हो जाना, स्थिर हो जाना। ये तीसरा स्टेप। चौथा स्टेप फिर अनुभव करना, उस गुण या पर्टिकुलर शक्ति को आत्मा अनुभव करती है, महसूस करती है, रियलाइज करती है। ये 4 स्टेप्स हैं। तो चलिए अपने बैकबोन स्ट्रेट रखें, आंखों को कहीं भी एक जगह पर स्थिर रखें। आधा खुला रखेंगे, पूरा बंद ना करें। बीच बीच में अगर आपको बंद भी करना है थोड़े कुछ सेकंड्स के लिए, आप बंद करें फिर आप खोलेंगे आंखों को। आसपास के वातावरण से, लोगों से, अपने मन और बुद्धि को किनारा करें, विथड्रॉ करें। और चले अंतर जगत की यात्रा के ओर। अपने आप को देखें, अपने मन और बुद्धि को कह दे कुछ मिनटों के लिए पूरी तरह वर्तमान में स्थिर हो जाएं। जो भी विचार आ रहे हैं जा रहे हैं कुछ समय के लिए रोक दे और केवल वर्तमान में फोकस करें। भ्रुकुटी के मध्य में मन के स्क्रीन पर अपने आप को देखने की कोशिश करें। मेरा निजी स्वरूप एक ज्योति बिंदु स्वरूप अति सूक्ष्म ब्रेन के बीचों बीच मैं विराजमान हूं। सोचने के साथ साथ देखे भी कि मैं सचमुच अपने आप को देख पा रही हूं बुद्धि के तीसरे आंख से। ब्रेन के बीचों बीच मैं विराजमान हूं। अति सूक्ष्म ज्योति और वो मैं हूं। मैं चैतन्य शक्ति हूं, इस शरीर को प्राण प्रदान करने वाली लाइफ फोर्स हूं। मैं मालिक हूं, राजा हूं। ये शरीर केवल मेरा वस्त्र है जिसको मैं पहनकर इस कर्म क्षेत्र पर कर्म कर रही हूं। ये शरीर जड़ है लेकिन मैं आत्मा चैतन्य हूं। मैं आंखों द्वारा देख रही हूं, कानों द्वारा सुन रही हूं, मुख द्वारा बोल रही हूं, अलग अलग कर्मेंद्रियों के द्वारा अलग अलग कर्म कर रही हूं, लेकिन कर्म करने वाली मैं आत्मा हूं। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, शक्ति स्वरूप आत्मा हूं। प्रेम स्वरूप आत्मा हूं। जैसे मैं अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु हूं, वैसे मेरे पिता भी अति सूक्ष्म ज्योति स्वरूप हैं। मैं अपने मन और बुद्धि के आधार से ऊपर के तरफ जाती हूं, जहां मेरा निजी घर है, परम धाम, मुक्ति धाम, शांति धाम। मेरा घर सभी आत्माओं का घर, सो मेरे पिता का घर, परमात्मा का घर, वहां अनेक आत्माएं मेरे जैसे जगमगा रहे हैं, लेकिन उनमें से एक अति शक्तिशाली तेजोमय परमपिता परमात्मा मेरे अति प्रिय पिता सर्वशक्तिमान मेरे सामने मैं आत्मा उनके अति प्रिय संतान हूं। मेरे पिता से शक्तियों के किरणें निकलकर मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं, और मैं आत्मा उन शक्तियों के किरणों को अब्सॉर्ब कर रही हूं, ग्रहण कर रही हूं, अपने आत्मसात कर रही हूं। मेरे जन्म जन्मांतर के दुख दर्द मिटता जा रहा है, सब बोझ हटता जा रहा है। मैं हल्का होती जा रही, हल्की होती जा रही, लाइट होती जा रही है। सब बोझ मैं परमात्मा के हवाले करती जा रही हूं, सब चिंताएं दुख दर्द सब कुछ परमात्मा के हवाले कर रही हूं, क्योंकि मुझे विश्वास है मेरे पिता मेरे साथ हमेशा है मुझे गाइड करने के लिए, मेरे हाथ पकड़ करके आगे ले जाने के लिए। परमात्मा की छत्र छाया के नीचे मैं आत्मा एकदम सुरक्षित महसूस कर रही हूं। अपने अंदर सर्व शक्तियों को भर रही हूं। सब कुछ भरते हुए सब शक्तियों को भरते हुए मैं आत्मा पुनः अपने कर्म क्षेत्र पर पहुंचती हूं, लेकिन निरंतर परमात्मा के साथ जुड़ी हुई हूं। निरंतर परमात्मा से ले रही हूं और संसार को दे रही हूं। परमात्मा की शक्तियों को चारों तरफ फैला रही ताकि सभी आत्माएं परमात्मा की शक्तियों को अनुभव करें, जीवन में ग्रहण करें और वो आत्माएं भी उस परमात्मा के साथ कनेक्शन जोड़कर सशक्त बनते जाएं। हर आत्मा दुख दर्द से मुक्त हो जाएं, भय चिंता सब नकारात्मक भावनाओं से मुक्त हो जाएं, और वसुधैव कुटुंबकम की भावना जागृत हो जाए। ओम शांति।